पेज 56 ग वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस। भारत में वित्तीय स्रोतों का भी केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। संघीय सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। संघीय सरकार के आय के स्रोत अधिक होने के कारण वह धन का काफी बड़ा भाग राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में बांट देती है तथा इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र की राज्यों पर श्रेष्ठता स्थापित होती है। संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। एक, संघीय सरकार के आय के स्रोत, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघीय सरकार के आय के प्रमुख स्रोत हैं, एक, सीमा तथा निर्यात ड्यूटी, कस्टम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू, दो, आयकर, इनकम टैक्स, तीन, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, चार, कृषि के अतिरिक्त शेष संपत्ति पर कर, एस्टेट ड्यूटी, पांच, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों पर कर, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, छह, कृषि भूमि के अतिरिक्त शेष संपत्ति पर विरासत कर, सक्सेशन ड्यूटी, सात, अंतर्राज्यीय व्यापार कर, इंटरस्टेट ट्रेड टैक्स, आठ, रेल, समुद्र तथा हवाई मार्ग द्वारा आने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमा शुल्क, नौ, शेयर बाजार तथा वायदा बाजारों के सौदे पर कर, दस, समाचार पत्रों के क्रय तथा उनमें छपे विज्ञापनों पर लगाया गया कर, ग्यारह, चेकों, विनिमय पत्रों तथा वायदा पत्रों आदि पर कर, बारह, रेलवे तथा डाक तार आदि से होने वाली आय, दो, राज्य सरकारों की आय के स्रोत, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्रोत हैं, एक, भूमि से इकट्ठा किया मालिया, दो, कृषि से होने वाली आय पर कर, तीन, अफीम, भांग, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों पर लगाया गया उत्पादन कर, चार, कृषि भूमि का विरासत पर लगाया गया कर, पांच, कृषि भूमि के संबंध में संपत्ति कर, छह, मकानों पर लगाया गया कर, सात, बिजली की खपत पर विक्री कर, आठ, क्रय तथा विक्रय कर, नौ, टोल टैक्स, दस, मनोरंजन कर, ग्यारह, नावों पर कर, बारह, सड़कों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों तथा ट्रामों पर कर, तेरह, पशुओं पर कर, चौदह, कारोबार पर कर, पंद्रह, खनिज पदार्थों पर कर, सोलह, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर। केंद्र की आय के स्रोत विशाल होने के कारण वह निम्नलिखित ढंगों से अपनी आय को राज्यों में बांटता है। एक, ऐसे कर जो केंद्र लगाता है, राज्य इकट्ठे करते हैं तथा प्रयोग करते हैं। टैक्सेस विच आर लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द स्टेट्स। धारा 268 के अधीन स्टाम्प ड्यूटी, दवाओं तथा नशीले पदार्थों पर कर, श्रृंगार के सामान पर लगाया गया उत्पादन कर आदि केंद्र लगाता है तथा इसे राज्य इकट्ठा करते तथा प्रयोग करते हैं। दो, ऐसे कर जो केंद्र लगाता है तथा इकट्ठे करता है तथा राज्यों को दे देता है। टैक्सेस विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट गिवन टू स्टेट्स। धारा 269 के अधीन संपत्ति उत्तराधिकार कर, कृषि भूमि को छोड़कर शेष संपत्ति पर लगाया कर, रेल, जल तथा हवाई मार्गों द्वारा लाए गए माल तथा यात्रियों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय तथा विक्रय और उनमें छपे विज्ञापनों पर लगाया गया कर, रेलवे किरायों तथा भाड़ों पर लगाया गया कर, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार पर कर केंद्र लगाता तथा इकट्ठे करता है परंतु राज्यों में बांट देता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में से राज्यों को दिए जाने वाले भाग का 10% वृद्धि किए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे 24 फरवरी 2015 को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अतः आज केंद्रीय करों में से राज्यों का भाग बढ़ाकर 42% हो गया है। तीन, ऐसे कर जो केंद्र लगाता तथा इकट्ठे करता है परंतु केंद्र तथा राज्यों में बांट दिए जाते हैं। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। धारा 270 के अधीन कृषि आय के अतिरिक्त शेष आय कर, संघीय सूची में शामिल दवाओं तथा प्रसाधनों के उत्पादन कर को छोड़कर शेष केंद्रीय उत्पादन पर केंद्र कर लगाता तथा इकट्ठे करता है, परंतु इन स्रोतों से प्राप्त आय को वित्त कमीशन फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों में बांट दिया जाता है। चार, कर जो केंद्र लगाता, इकट्ठे करता तथा प्रयोग करता है। टैक्सेस विच आर लेविड, कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय सेंटर। आयात निर्यात कर, निगम कर, चेकों, विनिमय पत्र, बचत बैंक, डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, लाइसेंस, फीस इत्यादि केंद्र ही लगाता, इकट्ठे करता तथा प्रयोग करता है। पेज 57। पांच, पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात करके बदले ग्रांटें। ग्रांट्स इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ज्यूट एंड ज्यूट प्रोडक्ट्स। धारा 273 के अधीन असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार में से पटसन के निर्यात पर लगाया गया कर केंद्र के खजाने में जाएगा, परंतु इसके बदले में इन चार राज्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से ग्रांटें दी जाएंगी। छह, राज्यों को ग्रांटें, ग्रांट्स टू द स्टेट्स। धारा 275 के अधीन भिन्न भिन्न राज्यों को विकासकारी कार्यों के लिए संसद द्वारा निश्चित ग्रांटें दी जाएंगी, परंतु ग्रांट उस उद्देश्य के लिए ही खर्च की जाएगी जिसके लिए दी गई थी, तथा सरकारी लेखा परीक्षक खर्च किए धन के हिसाब किताब की जांच करेंगे। सात, वित्त आयोग की स्थापना, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। धारा 280 के अधीन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आयोग के सभापति के अतिरिक्त 4 और सदस्य होंगे तथा सदस्यों की योग्यताएं तथा नियुक्ति की विधि संसद द्वारा निश्चित की जाएगी। वित्त आयोग, एक, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का विभाजन, तथा दो, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली ग्रांटों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा परामर्श आदि के लिए कोई भी मामला वित्त आयोग को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा 13वां वित्त आयोग विजय एल केलकर के नेतृत्व में, रिपीट, विजय एल केलकर के नेतृत्व में 14 नवंबर 2007 को कायम किया गया था, जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2009 को राष्ट्रपति को पेश की गई थी, जिस सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2009 को राष्ट्रपति को पेश किया गया था, जिसे सरकार द्वारा 25 फरवरी 2010 को स्वीकार किया गया था। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में से 32% हिस्सा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की गई थी, जो कि पहले दिए जा रहे हिस्से से 1.5% अधिक था। 2 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक के भूतपूर्व प्रमुख श्री वाई वी रेड्डी के नेतृत्व में 14वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था, जिसके द्वारा केंद्रीय करों में से राज्यों के भाग को 32% से बढ़ाकर 42% किए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड टिल डेट। फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट, चेयरमैन केसी नियोगी, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1951, रिपोर्ट सबमिटेड 1952। फाइनेंस कमीशन, सेकंड, चेयरमैन के संथानम, Year of Appointment 1956, Report submitted 1957. Finance Commission, 3rd, Chairman A.K. Chanda, Year of Appointment 1960, Report submitted 1961. Fourth Finance Commission, Chairman P.V. Rajamannar, Year of Appointment 1964, Report submitted 1965. Fifth Finance Commission, Chairman Mahavir Tyagi, Year of Appointment 1968, Report submitted 1969. Sixth Finance Commission, Chairman Brahmanand Reddy, Year of Appointment 1972, Report submitted 1973. Seventh Finance Commission, Chairman J.M. Shettle, Year of Appointment 1977, रिपोर्ट सबमिटेड 1978. एट्थ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन वाई वी चवन, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1982, रिपोर्ट सबमिटेड 1984. नाइन्थ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एन के पी साल्वे, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1987, रिपोर्ट सबमिटेड 1989. टेंथ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के सी पंत, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1992, रिपोर्ट सबमिटेड 1994. इलेवेंथ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ए एम खुसरो, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1998, रिपोर्ट सबमिटेड 2000. ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन सी रंगाराजन, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 2002, रिपोर्ट सबमिटेड 2004. थर्टींथ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन विजय केलकर, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 2007, रिपोर्ट सबमिटेड 2009. फोर्टींथ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन वाई वी रेड्डी, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 2015, रिपोर्ट सबमिटेड 2015. आठ, ऋण लेना, बोरोइंग. धारा 239 के अधीन राज्य सरकार राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की जमानत पर केंद्रीय सरकार से ऋण ले सकती है, परंतु राज्य सरकारें केंद्र की स्वीकृति के बिना अन्य देशों से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकती. इसके विपरीत केंद्रीय सरकार संसद की स्वीकृति से संचित निधि की जमानत पर विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकती है. पेज 58. नौ, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी. धारा 360 के अधीन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसके प्रमुख प्रभाव हैं: एक, राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्देश दे सकता है. दो, राष्ट्रपति राज्य विधान मंडलों द्वारा पास किए गए धन बिलों को विचार के लिए अपने पास मंगवा सकता है. तीन, राष्ट्रपति सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है. संक्षेप में, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है. दस, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वित्तीय स्रोतों का पुनः विभाजन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. धारा 352 के अधीन लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का पुनः विभाजन किया जा सकता है. 11. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. केंद्र तथा राज्यों के आय तथा व्यय की जांच पड़ताल नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. निष्कर्ष, कंक्लूजन. उपलिखित केंद्र तथा राज्यों के परस्पर वैधानिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्यों के मुकाबले में केंद्र बहुत शक्तिशाली है. यद्यपि संविधान के अनुसार विषयों तथा आय के स्रोतों का विभाजन किया गया है, परंतु इस सब के बावजूद भी केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है.